ओम शांति। हमारे बीच परम आदरणीय राजयोगी मोहन सिंघल भाई जी हैं। आदरणीय भाई साहब को 1962 में ही बाबा का ज्ञान मिला। आपने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में 28 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। तत्पश्चात वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर आप पूरी तरह से बाबा के यज्ञ में समर्पित हुए। साइंटिस्ट इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स विंग के आप चेयरपर्सन हैं। आपके नेतृत्व में बहुत सारे अभियान निकाले गए, नेचर एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट कैंपेन भारत में और नेपाल में। भाई साहब के नेतृत्व में अभी तक 23 अभियान निकाले जा चुके हैं और पर्यावरण के क्षेत्र में भाई साहब के नेतृत्व में जो कार्य किए गए उसके लिए भारत के HRD मिनिस्टर के द्वारा आपको सम्मान से भी नवाजा गया, पर्यावरण श्री के सम्मान से भी नवाजा गया। 2013 में राजस्थान के राज्यपाल द्वारा आपको ग्रीन आइडोल के सम्मान से भी सम्मानित किया गया। और सबसे अहमियत की बात है, भाई साहब वो महान हस्ती हैं, साकार बाबा ने जब अपना भौतिक देह त्याग किया उस दृश्य के आप प्रत्यक्ष दर्शी रहे। तो धन्य वो नयन जो एक संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किए हुए आत्मा को अपने देह को त्याग करते हुए उस दृश्य के प्रत्यक्ष दर्शी रहे। तो आदरणीय भाई साहब से आज हम सुनेंगे संपूर्णता के लिए सूक्ष्म शक्तियां।
ओम शांति। धन्यवाद बहन जी का, क्योंकि बहुत बड़ा वर्णन कर दिया, लेकिन साथ ही साथ बताया कि ये प्राइज मिला, ये अवार्ड मिला। यहाँ पर संगम पे सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा हो सकता है? बाबा मम्मा की पालना लेना। उसमें भी जो बहन जी ने बता तो दिया ही, दृष्टि में किस प्रकार से अंतिम समय अंतिम दिन बाबा का 18 जनवरी 1969 ये देखा, बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था। बस बाबा तो कहता है हम सब लोगों को साक्षी दृष्टा होके रहने की बहुत आवश्यकता है। तो अंतिम दिन के बाद से हमें जब भी कोई रेफरेंस आता है तो ये साक्षी दृष्टा की बात याद आ जाती है। हम सबको भी अंत में ऐसी परिस्थितियां होंगी जो अपने लौकिक हैं, कुछ संबंधी हैं, बहुत कुछ, कोई ऊपर जा रहा है, घायल होंगे, बीमार होंगे, तो ऐसी स्थिति में कौन सी स्थित अवस्था हमारी होनी चाहिए? साक्षी दृष्टा। तो साक्षी दृष्टा अवस्था बनाने के लिए जो बातें हमारे ध्यान में आती हैं, दृष्टि से देखते हैं हम, तो ये दृष्टि जो है वास्तव में ये जैसे खिड़की है और दृष्टा आत्मा है। तो दृष्टा बन करके हमें इस खिड़की से देखना है। जैसे कोई भी कमरे की खिड़की से बाहर का दृश्य देखते हैं ना, तो खिड़की तो जड़ चीज है, उसको तो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो माध्यम बन जाती है जो पीछे खड़ा व्यक्ति देख रहा है। तो साक्षी दृष्टा अवस्था बनाने के लिए एक तो हमें अंत समय दृष्टा अर्थात आत्मा की स्थिति रहे। दूसरी बात, ये दृष्टा के साथ साथ क्योंकि बाबा नैनों की बात करते हैं और इसमें दृष्टा में दृष्टि आ जाती है और अंत समय के लिए बाबा हमेशा ही कहते हैं हमारी दृष्टि कैसी हो, एकदम सिविल दृष्टि, सिविल आई, बस जो देखने का है वो ही देखें और दूसरी चीज हमें दिखाई ना दे। तो ब्रह्मा बाबा के साथ वैसे हमें 1962 में ज्ञान में आए और 7 वर्षों में लगभग 12 से 15 बार बाबा मधुबन आना हुआ होगा, क्योंकि उस समय तो कोई रिस्ट्रिक्शन थी नहीं, और भी ज़्यादा बार हो सकता है। और बाबा के पास जैसे ही जाते थे तो बाबा ऐसे बाँह फैला के और दृष्टि देते थे और बाबा की दृष्टि ऐसी होती थी कि आत्मा जैसे उड़ जाती थी। बाबा ने दृष्टि दी और बाबा की बाहों में गए, स्पर्श की भी शक्ति होती है। तो बाबा ने चूंकि ये अपना पक्का किया हुआ था, आप सबने पढ़ा होगा बाबा की जीवन कहानी में, मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है, जो जो आत्मा है लौकिक और अलौकिक, जिनकी संभावना है कि उनकी याद हमें आ सकती है, तो बाबा ने सबका लिख लिख के पक्का किया था। उसके बाद उनका पक्का करने के बाद फिर बाबा की दृष्टि ऐसी हो गई थी कि बाबा देखते थे। और बाबा एक मुरली में बोला था, अव्यक्त मुरली में ना, जब अव्यक्त बाप दादा देखते हैं तो क्या आपको पता चलता है कि नैनों में देख रहे हैं या भ्रकुटी में देख रहे हैं? याद है वो मुरली? एक आज की क्लास में भी था। अच्छा, तो वो साक्षी दृष्टा की बात जो है ना, तो एक है दृष्टा, दूसरी है दृष्टि, तीसरी चीज है दृश्य। क्योंकि जो दृष्टा दृष्टि के थ्रू देखता है वो है दृश्य। तो दृश्य कभी भी स्थायी नहीं रहता। लौकिक में भी आप कार से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, प्लेन से, कहीं भी भाई एक दृश्य आया चला गया, दूसरा आया पहला वाला पुराना हो गया। तो ये हमें जीवन में जो भी दृश्य देखें, अच्छे हों बुरे हों, वो सारे के सारे दृश्य जो है हमें इस अभ्यास के साथ देखने हैं कि मैं दृष्टा इस दृष्टि के द्वारा ये दृश्य देख रहा हूँ जो कि वैनिश होने वाला है, खत्म होने वाला है कुछ सेकंड में। लेकिन कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो हमारे पर हमारे जीवन में अमिट छाप छोड़ जाते हैं, विशेष करके अगर कोई दुखदायी दृश्य हो, किसी आत्मा से बड़ा स्नेह हो, वो चली गई, तो बस फिर वो बात भूलनी मुश्किल हो जाती है। तो ये दृश्य जो है, ये दृश्य इसी बात को समझ करके सदैव देखेंगे कि ये दृश्य है बस जा रहा है, जाने वाला है। कोई अच्छी बात हो वो भी नहीं ठहरती है, खराब बात हो वो भी नहीं ठहरती। तो इसलिए ये 3 बात हो गई साक्षी दृष्टा बनने के लिए। चौथी बात है दृष्टिकोण, हमारा एटीट्यूड क्या है। क्योंकि कोई भी बात अच्छी या बुरी नहीं होती है जब हम देखते हैं उसे किस एटीट्यूड से देख रहे हैं, किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वो बात अच्छी या बुरी बन जाती है। तो अंत के लिए हमें अपने को साक्षी दृष्टा में पक्का तो करना है, इसलिए ये बात याद रखें, दृष्टा दृष्टि दृश्य दृष्टिकोण, और लास्ट में क्या है, हमारा दृष्टांत जो लिखे जाएंगे भक्ति मार्ग में, हमारे और आपके ही तो दृष्टांत हैं जो भक्तों के, अभी भले वो बहुत बड़े बड़े भक्तों के नाम याद हैं, वो करते हैं कोई भी उनके गुरु होता है अथवा कोई, तो दृष्टांत जो है वो दृष्टांत बनेंगे तभी जब हमारी ऐसी स्थिति होगी और इसमें हम शरीर छोड़ेंगे ऐसी स्थिति में। तो बाबा को हमने अंतिम दिन यही देखा इन पांचों बातों से बिल्कुल ओतप्रोत, क्योंकि मुझे ये सौभाग्य मिला है जैसा बहन जी बता रहे थे 18 तारीख को, 17 और 18 जनवरी 1969 को हम मधुबन में आ गए। बस बाबा ने ही बुला लिया, क्योंकि जब जा रहे थे आसाम अपना इंजीनियरिंग पास करके धनबाद से जो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है, तो वहाँ से बाबा के समीप आने का काफ़ी मौका मिला, क्योंकि वहाँ पर तो था नहीं, सेंटर नहीं था जब हमारा वहाँ पर जाना हुआ पढ़ाई के लिए। लेकिन साकार बाबा उस समय तो बाबा थे, बाबा से कोई भी बात होती थी पूछ लेते थे, बस बाबा से कहा बाबा वहाँ जा रहे हैं पढ़ने के लिए, अब वहाँ तो सेंटर नहीं है, हॉस्टल में अगर रहना पड़ा तो वहाँ भोजन करना पड़ेगा, वो तो अशुद्ध भोजन होगा। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं बच्चे जाना, और कुछ लौकिक दृष्टांत बाबा ने बताया कि उसको हाथ में करना, हॉस्टल में रहने रहोगे तो जो बनाता है भोजन वाला उसको कुछ एक्स्ट्रा दे करके उसे बोलना कि वो बिना प्याज लहसुन का भोजन निकाल ले। उसके बाद तो बस बाबा ने बताया नहीं लेकिन हिंट दे दिया, उसके बाद तो तुम्हें पवित्र भोजन मिलेगा। तो उसको ऐसा ही करा और लगभग एक महीने तक वो कुछ जो हॉस्टल में, ये मैं बात कर रहा हूँ 1963 की, 63 में वहाँ जाना हुआ, उनमें मोस्ट ऑफ यू तो आप तो शायद पैदा ही नहीं हुए होंगे, है ना, उस वक्त की बात है, या कोई बूढ़े और बूढ़ी के रूप में होंगे पिछले जन्म में। लेकिन बाबा लौकिक में भी हिंट दे देता था और साकार में वो समस्या को एकदम समाधान हो जाता था। तो एक तो इस रीति से हुआ, तो थोड़े दिन ही हॉस्टल में करना पड़ा, और बाबा कहता था बच्चे खाना है तो दृष्टि दे के खाओ, जब हम दृष्टि से सृष्टि बदल सकते हैं तो क्या भोजन को शुद्ध नहीं कर सकते। इतना लेवल बाबा हाई कर देता था माइंड का। और बस उसके बाद वहाँ पर रहना हुआ और थोड़े दिनों में फिर बाबा के पत्र आते थे हॉस्टल में ही, सेंटर तो वहाँ था नहीं कोई भी, बच्चे धनबाद हाँ बहुत अच्छी जगह है और बोलते हैं उसे कि richest land but poorest people, बिहार का ये वर्णन करने में आता था। और धनबाद का लैंड बड़ा richest है, माइनिंग है, मटेरियल है, वहाँ पर सब प्रकार की खाने हैं, मिनरल्स बहुत। तो इसीलिए बस बाबा ने दिया कि बच्चे बहुत अच्छी जगह, वहाँ जाते ही मकान ढूंढो और सेंटर खोलो। तो ये भी बाबा ने इसमें लगा दिया कि भाई सेंटर खोलने के लिए कहा ही नहीं, बाबा जो कहता था तो उसकी शक्ति भर देता था। बस वहाँ पर गए और सबसे पहले तो एक भाई का, वो क्लास करते थे वहीं पर, हम मुरली पढ़ते थे, अब जिसका भाग्य होता था तो एक भाई हाँ विनोद भाई जो नीचे ही हैं, वो फर्स्ट ईयर में ही हमारे कॉलीग थे, तो ये क्या चीज़ है पोस्ट ऑफिस से, हमने कहा रे नहीं मालूम ये भगवान का लव लेटर है। तो अच्छा क्या चीज़ है, क्योंकि हमारा लिफाफा भी वो ऐसा ही अलग होता था ना, आयु भी उस समय 16-17 साल की थी। तो उनको दिखाया, अब वो पुरानी भक्त आत्मा होगी इतने सारे पढ़ने वाले, लेकिन उसमें पहला बीच हॉस्टल में से वही निकला। तो एक से जब दो हो जाते हैं तो वो तो 11 हो जाते हैं। मकान ढूंढा, वो भी बहुत कम पुरुषार्थ में मकान मिल गया, और कुछ महीने में ही बाबा को लिखा कि बाबा मकान मिल गया है। तो एक अच्छी बात थी कि पास में ही सिंदरी जगह है सिंदरी फर्टिलाइजर, तो वहां पर हमारी गीता पाठशाला चलती थी और एक युगल थे, तो पास में माने बहुत काफी नियर 40 किलोमीटर जैसा होगा। तो उस समय सिंदरी में से वो आते थे और उनको पहले कहा, तो पहले तो मुरली तो हमारी आती थी मधुबन से और उन्होंने भी बहुत पुरुषार्थ किया और इस तरह बाबा का ये है। और वही बात दादियों में है और हमारी वरिष्ठ बहनों में है, वरिष्ठता में कि कोई बात अगर सेवा देते हैं तो कहते ही नहीं उसकी शक्ति भी भर देते हैं और उसके अंदर सफलता समाई हुई है। बाबा मम्मा में तो ये देखा ही, चलो वो तो विशेष आत्मा थे, लेकिन दादियों में भी ये देखा कितनी बार कि आते थे। एक दृष्टांत है, दादी प्रकाशमणि जी थे ना, तो उनमें तो आप अक्सर मिले होंगे, तो दादी ने एक बार ऐसी सभा में बोला, लाख दादी की इच्छा है कि 1,00,000 की सभा में दादी भाषण करे। तो उस समय तो लाख, ये मतलब उस समय की बात नहीं है, ये है सब 80s की बात होगी शायद या 90s की। तो हमारे वहां पर मैं तब तो जॉब में आ गया था, तो दृष्टांत आया इसलिए बताया, तो किसी ने हाथ नहीं लाख किया। तब तो हमारे यहाँ बहुत कम सेंटर थे और सेंटर में आने वाले भी कम थे, लेकिन दादी ने बोला है तो तब मैं अहमदाबाद में पोस्टेड था, तो अहमदाबाद में सरला दीदी के साथ हम लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि दादी हम लोग प्रोग्राम करेंगे। और 1,00,000 का प्रोग्राम उसके बाद सोचा था 1,00,000, लेकिन 1.25 लाख लोग आ गए, बहुत बड़े। तो हमारी दादियों में, वरिष्ठ बहनों में, उन सब में ये शक्ति समाई हुई है कि अगर सेवा केंद्र की आपकी इंचार्ज बहन भी, ये उन्हें भी नहीं मालूम होता, लेकिन बाबा जैसे संगम युग को ये वरदान है कि भाई जो वरिष्ठ के मुंह से निकलेगा उसमें साथ साथ कर्म में सफलता भी समाई हुई है। तो अगर कोई सेवा का चांस सेंटर पर मिलता है, बहन बोलती है तो हमने न भी किया हो, लेकिन अगर हाँ बहन जी क्यों नहीं, जरूर मैं कोशिश करता हूँ जरूर। और आपने हाँ की, हाँ के साथ साथ बाबा से सफलता का वरदान भी मिल जाता है। हमारे जीवन के तो बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं। तो एक बात ये होती है, हाँ, जो हम सब के ध्यान में रखने जैसी है संगम युग में, तो ये एक शक्ति। अब मैं टॉपिक से थोड़ा डेविएट कर रहा हूँ, तो साक्षी दृष्टा की तो 5 बात बताई थी अंत समय के लिए, और आज की मुरली में क्या था, 2-3 पॉइंट मुझे आज की मुरली सुनते समय याद आई। एक तो साक्षी दृष्टा भी था, एक हाँ धोखे से बचना है ऐसा भी कुछ था ना। तो धोखे की बात होती है तो उसमें देखना, कहा जाता है कि धोखा देने वाला, हाँ धोखा देना धूर्तता है, धूर्तता बहुत कड़ा शब्द है। किसी को अगर हम धोखा देते हैं, हमारे में तो ये संस्कार होना ही नहीं चाहिए, हम धोखा भी न समझें। कई बार हम कहते हैं युक्ति युक्त चलना पड़ता है या ये, तो धोखा देना धूर्तता है, धोखा खाना मूर्खता है। उसके लिए भी हमें अटेंशन रहना चाहिए, अरे ये तो ब्रह्मा कुमारी में जाता है, सिंपल है, और कोई ठग ले, कोई गलत बात हमसे करवा ले, तो धोखा खाना भी ये मूर्खता है। हमारा शराफत सबसे टपके, लेकिन उसमें कोई मतलब यूजुअल एडवांटेज ना उठाए। और तीसरी बात है, धोखे से बचना बुद्धिमानी है। धोखा देना धूर्तता है, धोखा खाना मूर्खता है, और धोखे से बचना बुद्धिमानी है। दो बात आज की मुरली से जो हमने नोट की, हर मुरली से हम 2-3 पॉइंट बस पकड़ लेते हैं, फिर उस पर मंथन करने का प्रयास करते हैं सारे दिन भर। और तीसरी बात जो आज हमारी बुद्धि में आई, उसमें से शायद अंत में था मुरली के या क्या था, वो ये था जो बाबा ने कहा योग, योग के ऊपर चल रहा था ना शायद, लास्ट वाला था ना, तो योग जो है, योग का कवच, और योग के लिए बाबा क्या बोलता है, कौन सा योग होना चाहिए, ज्वालामुखी योग। आप सब तो कलकत्ता से हैं, कहाँ से हैं? तो पंजाब में एक जगह है, और अपना मैं इंजीनियरिंग पास करने के बाद ना, क्योंकि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करा, एक्सप्लोरेशन, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स बोला जाता है, तो ONGC में हमने जॉब ज्वाइन किया, 67 में पास किया। तो बाबा के पास आए, उस समय तीन जॉब हमारे हाथ में थे, एक मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का, एक उसका हैदराबाद का, और तीसरा ये ONGC का। तो हमारी लास्ट प्रेफरेंस थी ONGC, क्योंकि ये सब जगह जाना फील्ड जॉब है, हम चाहते थे, ज्ञान में थे, चाहते थे ऐसा स्टेबल जॉब हो 9 to 5, जो हमें ज़्यादा ना बाहर जाएंगे तो खाने की दिक्कत आदि आदि। तो ये सब ऐसा था। और बाबा ने पूछा, हाँ बच्चे किस में जाओगे, बाबा को बताया, मैंने बताया ना, उस समय तो बाबा थे, एडवांटेज रहता था, अरे भगवान के मुख से जो भी होगा वो सफलता को समाया हुआ है। तो बाबा को बोलते थे, बाबा ने कहा, देखा अब क्यों जाना चाहते हो बच्चे हैदराबाद या वहाँ दिल्ली, तो बताया बाबा स्टेबल लाइफ होगी, 10 to 5 का जॉब होगा, हम ज्ञान में इतने साल से चल रहे हैं, 6-7 साल हो गए थे, तो वहाँ पर भोजन का भी शुद्धता रहेगी और सब कुछ। तो बाबा ने देख के क्या, नहीं लेकिन बच्चे बाबा की इच्छा है, तुम ये तीसरा वाला जो लिस्ट प्रेफरेंस था उसे ज्वाइन करो। और उसमें हमारी पोस्टिंग आसाम में हुई थी, पूरे आसाम और 7 स्टेट ईस्टर्न रीजन की कही जाती हैं, 7 सिस्टर, आसाम और मेघालय और अगरतला और नागालैंड वगैरह, कहीं पर भी कोई मतलब गीता पाठशाला भी नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ 68 की, 67 में पास किया, 68 में उधर पोस्टिंग हुआ। तो बाबा ने कहा है, तो बाबा ने कहा है भैया, और ये तो थोड़ा अनिच्छा से ही जाना हुआ, लेकिन बाबा ने ना सब जैसे सजा के, बच्चे ये धड़ी है, ये ऊपर कालीन है, इस पर बैठ के योग करना, ये बहुत क्लास में आने लगेंगे, भगवान ने पहले इंट दे दिया उनके लिए, ये बड़ा वाला ले जाओ। फिर तब ग्रामाफोन चला करता था और रिकॉर्ड होता था, तो ये इस तरह कह के बाबा ने सब स्थूल सूक्ष्म चीजों से सजा करके भेजा, और भगवान ने भेजा, तो इसमें तो बहुत बड़ी सफलता है। तो आसाम गए, और एक शिव सागर जगह है, तो शिव सागर में वहां जाने के बाद वो वहाँ पर शिव का बहुत बड़ा मंदिर है, इसीलिए शिव सागर उस जगह का नाम पड़ा, और लेक एक बहुत बड़ी है। तो उस लेक, तो बाबा पत्र हर हफ्ते लिखते थे, आज भी मेरे पास लगभग 10 पत्र बाबा के हैं एंड राइटिंग में, वो तो बहन जी बताएंगे आपको, यहाँ 4 दिन तक वो लाल अक्षर में बाबा सिंधी में लिखा करते थे, थोड़ा दूर दूर डिस्टेंस, और बीच में ईशु दादी उसका हिंदी ट्रांसलेशन करते थे। तो बाबा डायरेक्शन, बच्चे वहां जाके मंदिर के बाहर चित्र फैला के बैठ जाओ, और बस मंदिर से जो लोग निकलते थे बैठे हुए होते थे ऐसे, और सब देखते थे क्या चीज है, और वो बाबा कितना, युक्तियां भी बाबा बताते थे। तो इस तरह वो देख करके ही सुबह सुबह मंदिर में बहुत लोग आते थे, और खास करके पूरा बिजनेस जो है मारवाड़ियों के हाथ में है, वहां पर आसाम में। तो मारवाड़ी माताएं बहुत आती थी और भाई लोग बिजनेस में अपना लगे रहते हैं तो वो कम आते थे। कम क्या, 3-4 ही थे भाई, और माताएं जो हैं वो लगभग शुरू से ही 40-50 हो गया। उसका भी कारण था, बाबा कहता है ना, जब बाबा देखता है बताने वाला अनुभवी नहीं है और बुद्धू है, तो बाबा उसमें प्रवेश करके उसमें सुनाता है। कई बार बाबा ने बोला है ना, तो कई बार ऐसा ही होता था, बस ज्ञान सुनाया, बाबा आपने ये कहा है, बाबा का आह्वान करते थे। और उससे क्या होता था कि कई माताएं और छोटी बच्चियां भी उनकी 5-6 साल की 8 ध्यान में चले जाते थे साक्षात्कार। और जब मारवाड़ियों के अपने ही बच्चे, अपने ही युगल वगैरह उनके जाना हुआ, तो चारों तरफ तो बहुत हवा फैल गई, वहां तो भगवान के दर्शन होते हैं, वहां जाना होता है। और बस इस बात ने पूरे शहर में ना एक स्पिरिचुअल तहलका जैसा मचा दिया। भगवान के साक्षात्कार तो ना अपने हाथ में ना आपके हाथ में है, लोग आते थे कई लोग। वही बाबा वाली बात ना, कि बाबा के पास एक बार हम आए हुए थे, ओरिजिनल जीडी बिरला वो उस समय हुआ था, उसने बाबा के सामने एक ब्लैंक चेक रख दिया और बस बाबा मुझे साक्षात्कार करा दो भगवान के, लक्ष्मी नारायण के मंदिर वगैरह वो बनाता है। तो बाबा ने कहा, बच्चे बाबा के हाथ में है ही नहीं, ये तो शिव बाबा के हाथ में है और ब्रह्मा बाबा को ही बस कोई साक्षात्कार नहीं होता, तो ब्रह्मा बाबा दूसरों को कैसे कराएगा। हाँ, शुरू में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कुछ साक्षात्कार कराए थे, आप सभी जानते हैं, ये तो किसी के हाथ में भी नहीं है। कुछ हमारी संदेशी बहने हैं जो ध्यान में जाते हैं और इस प्रकार से साक्षात्कार। तो ये ऐसी बात है, वो इसने सेवा का ये एक साधन बन गया। शुरू में भी काफी, तो बाबा कहता है ना, अब हम गए तो अनिच्छा से थे, लेकिन बाबा ने ये कमाल करी और थोड़े समय में ही, कुछ महीने में ही मारवाड़ी माताओं ने बोला, रे हमने मंदिर बनाया, उसके ऊपर हॉल एक बनाया है इस काम के लिए, वो सेंटर तो बिना कुछ मेहनत करे के स्थूल की सेंटर ढूंढो, मकान वो सब काम वहाँ की माताओं ने कर दिया और वहाँ पर कुछ महीने में। तो भाव क्या है कहने का, कि वरिष्ठों के, और ये चीजें दिखती नहीं है, कोई बात साधारण सी रूप में कोई बोल देगा और लेकिन देखने में साधारण सी बात लगेगी, लेकिन सफलता। चलो ये बात अब वो हुई और इस प्रकार से वहाँ हुआ। और बाबा जब हम गए थे तो मैंने कहता था, बाबा इतनी दूर जा रहे हैं, वहाँ पर कैसे पालना होगी। वहाँ बाबा ने कहा, बच्चे जाओ और बाबा तुम्हें समय पर बुला लेगा, समय पर। तो 18 जनवरी से कुछ समय पहले ही बाबा का संदेश आया कि बच्चे जाओ। मैं देहरादून से गया था, वहाँ मेरी ट्रेनिंग फर्स्ट पोस्टिंग थी, तो वहाँ गया तो बाबा ने कहा कि बच्चे जाओ और वहाँ पर, ये आसाम में बाबा समय पर बुला लेगा। तो वो समय क्या था, बाबा ने लिखा ये पत्र, पहले तो पत्र ही होते थे, अब बाबा ने कहा बच्चे देहरादून जाओ। मैंने लिखा था कि बाबा वहाँ जाना होता है, वहाँ बहन जी बुला रहे हैं, म्यूजियम बनाना है, तो वहाँ पर इस तरीके से बाबा ने कहा मधुबन होके जाओ, पहले मधुबन आओ। तो हमने अपने लौकिक पिताजी को भी लिखा, वो भी आ गए, हम दोनों 17 जनवरी की सुबह यहाँ पहुंच गए। 17 जनवरी को कितनी बड़ी बात हो गई कि 17 और 18 जनवरी को बाबा का वो अंतिम स्वरूप देखने को मिला, जो बहन जी ने बताया, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था का, पहले बाबा से मिलते थे कभी तो बाबा कहता था कि बच्चे हाँ कैसे बातचीत के बाद कि कुछ पूछना है तो हम लोग पूछा करते थे कि बाबा सेवा कैसे करनी है अथवा योग नहीं लगता ध्यान बच जाता है जैसा जिसका होता है प्रश्न और बाबा उत्तर देता था। लेकिन बाबा की कर्मातीत अवस्था और इस उत्तर में क्या अंतर होता था कि अंतिम दो दिनों में जब बाबा के सम्मुख हम जाते थे ना बस बाबा दृष्टि देता था और मैं पहले ही बता रहा था आपको शुरू में जाते थे शुरू में जब कोई नया बच्चा तो हम भी जब 64 वगैरह में पहली बार गए 63 में ज्ञान में आए तो बस बाबा ने दृष्टि दी और ऐसे आओ बच्चे आओ और बस बाहों में समा लेते थे तो एक तो बाबा का स्पर्श एक दृष्टि वो हमें विदेही कर देती थी अशरीरी कर देती थी वो अवस्था। अब लौकिक में तो मालूम नहीं होता लेकिन जैसे गुम हो जाते हैं ना तो वो गुम होने की अवस्था। फिर उसके बाद बाबा ऐसे करता हाँ बच्चे आओ आओ तो वो हम लोग ध्यान से ध्यान तो नहीं कहेंगे अशरीरी अवस्था से उतरते थे फिर बाबा नाम वाम पूछता था सब करके टोली खिलाता था फिर दूसरा आता था वो भी इस मतलब एक ये क्योंकि बाबा ने ना इसकी प्रैक्टिस की थी मैं आत्मा हूँ ये आत्मा है तो बाबा जिसको भी दृष्टि देता था वो आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाता। तो हम सब भी अपने अंदर झांक के देख के कि मैंने इतना अभ्यास बाबा की तरह किया है कर्मातीत तो हम सबको बनना ही है तो एक ये बात। तो अंतिम दिन में हमने क्या देखा अब मैं सीधा ही वो उसका कंपैरिजन कि शुरू में बाबा पूछता था फिर बीच में जब हम लोग 67 वगैरह में आते थे 62-63 में बाबा पूछता था 67 में आए तो बस बाबा एकदम बाबा के पास जाते थे और एकदम भूल जाते थे कि बाबा से हमें ये पूछना है गुम क्योंकि बाबा की अवस्था ऐसी होती जा रही थी। तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है जितना जितना हम आगे बढ़ेंगे लोग हमारे पास आएंगे क्योंकि हम सब लोगों को बाबा मामा का पार्ट प्ले करना है दुनिया के सामने तो हम लोग ही साकार में है ना। तो जैसे बाबा की दृष्टि से ये अनुभव होता था ऐसे ही हम लोगों के सामने लोग आते थे तो जब 67-68 के करीब हम लोग बाबा के पास जाते थे गुम हो जाते थे बड़ी मुश्किल से याद करके बाबा से बात करते थे। लेकिन जब 69 में 17 और 18 जनवरी को बाबा को मिले बाबा ने दृष्टि दी बाबा कहता था बच्चे ये पूछने आए हो अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा मतलब हम क्या पूछने आए हैं वो भी बाबा को पता चल जाता था और उसका समाधान भी बाबा दे देता। ऐसा एक बार दो बार नहीं 6-7 बार उन दो दिन में हुआ क्योंकि और कोई पार्टियां थी नहीं बाबा से सुबह दोपहर कभी बाबा जनवरी का महीना है धूप में बैठा है खाली होते थे हम लोग बाबा के सामने चले जाते थे हम और हमारे लौकिक फादर। तो बाबा से इन दो दिनों में पालना भी बहुत मिली क्योंकि ठंडी के दिन थे कोई और आता नहीं था और बाबा ने खुद बुलाया था तो इसलिए इस तरह पहुंच गए और वो बात हो गई। तो एक कर्मातीत अवस्था का ये अनुभव कि जब हम भी इस अवस्था के निकट होंगे तो हम इस पर एक बहुत बहुत अच्छी मुरली अब मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि उस समय आप दूसरे की मन की अवस्था को जान लेंगे और मन की अवस्था को जान लेंगे तो क्या होगा जो भी व्यक्ति हमारे सामने आएगा तो बिल्कुल ऐसा ही अनुभव होगा उसे वो देखेगा और हम उसके अंदर डीप जा करके उसके मन को पढ़ सकते हैं। ये अवस्था तब आएगी बाबा की कि अपनी अवस्था मन जीते जगत जीत ऐसी होती थी इसीलिए कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अंत में जो भी लोग आएंगे, अंत माने अब लगभग अंत का ही समय चल रहा है, जिनको भी हम देखेंगे, दृष्टि देंगे, वो आत्माएं जैसे बिल्कुल अशरीरीपन का अनुभव करेंगे। और अंत में बाबा का तो एक करा ये, तो एक ये अनुभव किया, दूसरा अनुभव कि साथ में ना अंत में ऐसी अवस्था होनी चाहिए कि कोई याद और ना है। बाबा ने बताया है ना, अगर देहदारी, कोई संबंधी, धन दौलत, मकान, कुछ भी याद आया बाबा के सिवाय, तो उस स्थिति में जन्म लेना पड़ेगा। उस घर में जन्म तो हम तो चाहते हैं हम कर्मातीत बन के जाए। तो इतना बड़ा यज्ञ था, सब कुछ था, लेकिन बाबा को जैसे ना अंत समय उस दिन ऐसा लोगों को लग रहा था जैसे बाबा धरती पर है ही नहीं, पता यही था धरती पर ही, लेकिन जैसे अंतिम कर्मातीत अवस्था और सब कुछ, कोई भी पेंडिंग काम न रहे, बचा हुआ काम होता है वो ही याद आता है, ये करना था मुझे, ये रह गया, ये करके आता, बच्ची की समर्पण करना है, कोई धन से सेंटर खोलना है, कोई चीज सफल करनी है, तो अक्सर करके हम लोग टालते रहते हैं, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो बाबा ने भी चार पेंडिंग काम पड़े थे बाबा के भी, कौन कौन से, एक जहां पर प्रदर्शनी लगाई गई थी नक्की लेक के बाहर, वो मकान लेना था, सोच रहे थे, लेकिन तब हमारे पास इतने ज्यादा मींस नहीं होते थे, तो बाबा ने उस फाइल पर साइन किया कि इसको ले लो और इसमें ऐसा बनना चाहिए कि लोग संदेश लेके बहुत जाएं। तो वो नक्की लेक के पास हमारा जो म्यूजियम है ना, वो मकान पर साइन 17 जनवरी को ही बाबा ने फाइल पर करके 18 को वो मकान ले लिया गया। तो कितनी उसके अंदर वो हो रही है, कितने विश्व भर से लोग आते हैं और इस म्यूजियम के द्वारा संदेश लेके, भारत में ही हम जानते हैं, गुजरात में हम काफी रहे, गुजरात में ही 7-8 सेंटर उन द्वारा खुले जो यहाँ घूमने आए थे माउंट आबू, और यहाँ से संदेश लेके गए और सेंटर के निमित्त बन गए, देखने वाले तो बहुत होते हैं। तो बाबा ने उस फाइल पर भी, बाबा कुछ पत्र पड़े हुए थे काफी बाबा के पास, तब तो ये ईमेल और था नहीं, तो बाबा ने उस दिन पहला काम यशु दादी को बोला, बच्ची कोई भी पत्र अनआंसर्ड ना रहे, बिना जवाब दिए हुए सब पत्रों के जवाब लिखवा लो। तो जैसा मैंने बताया, लाल इंक पेंसिल से बाबा पत्र लिखते थे सिंधी भाषा में, और यशु दादी उसे ट्रांसलेशन करते थे जिससे पढ़ने वाले पढ़ सके। और बहुत ही अनोखा पत्र, आप लोगों ने भी बहुतों ने देखा होगा शायद, जिन्होंने देखे हैं ऐसे पत्र बाबा के हाथ के लिखे, हाथ खड़ा करें। अच्छा, बहुत कम लोग हैं। हाँ, मुझे अगर मौका लगा तो मैं कुछ काफी पत्रों की, बहन जी हिस्ट्री हॉल में भी रखा है ना, हाँ तो आप देखना। और बाबा, तब तो बाबा थे, मालूम था बाबा पत्रों को किस प्रकार से लिख करके डायरेक्शन देते थे, उसके अंदर बच्चे ये सेवा करो। बाबा ने वहां पर शुरू में ही बस कई सेवाओं का, बच्चे हॉल लेके भाषण करो, सेंटर खुल जाए वहां पर, तो इतना तो कैपेसिटी थी नहीं, फर्स्ट जॉब था, लेकिन करण करावन हार तो बाबा है ना, बाबा ने वो सब भी करा दिया। तो भाव क्या है, मैं इस चीज का, और अंतिम दिन में हमारी भी अवस्था ऐसी होगी, गौर करने की बात है, क्योंकि कर्मातीत बन के जाना है। इस स्थिति में मैं एक मम्मा का अनुभव सुना देता हूँ, कर्मातीत स्थिति का, कि मम्मा ने जून 24 को, शायद 24 जून था, वो शरीर छोड़ा, मम्मा की आत्मा ऊपर गई सूक्ष्म वतन में, तो मम्मा वहां गई तो वहां पर बाबा बाप दादा ने हाँ अव्यक्त बाबा ने साकार बाबा तो यहीं थे, मम्मा तो पहले चली गई, तो साकार बाबा ने पूछा कि बच्ची कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आई हो? तो मम्मा ने सोचा कुछ और फिर कहा नहीं बाबा मैंने तो नहीं किया। अरे नहीं किया, जाओ बच्ची अभी तुम्हारा शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा है और सब बच्चे योग कर रहे हैं, बाबा भी योग कर रहा है, साकार ब्रह्मा बाबा तुम्हारा आवाहन कर रहे हैं, जाओ बच्ची अभी तुम जाओ और वहां जाके तुम उस शरीर में प्रवेश करो और कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ। बाबा ने बोला मम्मा नीचे आई है, ये सब आत्मा की बात हो रही है, मम्मा काफी देर तक नीचे रही, उसके बाद मम्मा जब ऊपर गए तो बाबा ने फिर पूछा बच्ची कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आई? तो मम्मा ने कहा नहीं बाबा मैं तो नहीं कर सकी। क्यों बच्ची? तुम्हें भेजा इसीलिए ही था कि बाबा मैं नीचे गई, अब शरीर तो ठंडा हो चुका था, कोई चुरपुर नहीं हुई, मैंने कई बार शरीर में प्रवेश करने का प्रयास किया लेकिन मैं शरीर में प्रवेश ही नहीं कर सकी, इसीलिए कर्मातीत स्थिति का अनुभव भी नहीं। तब बाबा ने कहा बच्ची इसीलिए अभी तुम परम धाम नहीं जा सकती, परम धाम हर एक तभी जा सकता है, हर एक की कर्मातीत अवस्था तो अपनी अपनी है, अपनी सीट पर जाकर वहां हमें बैठना है, तो परम धाम तभी जा सकते हैं जब कब जब कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके हमने प्योरिटी की ओरिजिनल स्टेज को धारण किया होगा। तो इसीलिए बाबा की मुरलियां प्योरिटी पर पवित्रता पर तो चलती हैं, और इसीलिए बाबा कि जब तक हम वो स्टेज नहीं बोलेंगे तब तक हमारी सीट जो है हमारा आवाहन भी नहीं कर सकते, तो वो खींचेगी, मैग्नेट होता है ना तभी खींचता है लोहे को जब लोहा साफ होता है, तो मैग्नेट खींच लेगा चुंबक, और लोहे पर जंग चढ़ी हुई है तो जितना भी पास लाओ वो खींच ही नहीं सकता। तो परमधाम की सीट भी ऐसी है, अति पवित्रता वाली परमधाम तो है ही पवित्र धाम, तो वहां पर जाके हम तभी बैठ सकते हैं। तो इसका भाव बाबा ने कितना सुंदर निकाला कि बच्ची बच्चों को सबको जाकर कहना कि कोई भी बच्चे को ये संकल्प नहीं आना चाहिए संगम युग में कि मैं इस शरीर का त्याग करूं, बीमारी है शरीर में, धन की कमी है, बच्चे परेशान करते हैं, पति पत्नी में संबंध ठीक नहीं आदि आदि, तो बच्चों को कहना जितना ये संगम युग का शरीर तुम्हारा बेस्ट शरीर है, क्यों? क्योंकि इसमें बीमारी भी है की कमी है या कुछ, तो कभी भी ये नहीं सोचना ये शरीर छूटे तो मैं नया जन्म लू बच्चा बन जाऊंगा कोई चिंता नहीं होगी, नहीं, इस संगम युगी तन के द्वारा ही तुम्हें कर्मातीत बनना है, तो कभी भी ऐसे संकल्प ना है। तो ये बाबा ने कहा, और फिर और क्या, उस दिन बाबा ने 18 जनवरी की बात मैं कर रहा हूं, सुबह मुरली नहीं चलाई थी, लेकिन इसीलिए बाबा ने शाम बोला शाम को कि बच्चों को सुबह भी फ्रेश नहीं किया, आज मुरली नहीं चलाई, आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा कुछ 7:30 बजे जैसा, रोज क्लास होती थी 9:45 बजे, लेकिन 7:30 बजे के करीब बाबा ने चलाया, सब बच्चों को बुलाया और हिदायत दी कि सब भोजन करके आए, क्योंकि बाबा को तो अंदरूनी तौर पर मालूम था कि आज मेरा ये अंतिम मिलन है साकार बच्चों से, तो शरीर छोड़ने वाला हूं। इसी तरह हम बच्चों को कि जितनी बातें बाबा ने की हिंट सब में दे दिया बाबा ने, कोई पत्र अनानसर न रह जाए, आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा, भोजन करके आना, क्योंकि बाद में तो कोई भोजन करता नहीं, तो इस कारण से ये सब हुआ, बाबा क्लास में आए और उस दिन क्लास में बाबा को कोई भी परेशानी नहीं हुई, ना खांसी हुई, ना कफ की बात हुई, और इस तरीके से ये बाबा बिल्कुल ऐसी स्थिति में थे, कर्मातीत स्थिति में, ये शरीर के भोग कर्म भोगों के ऊपर योग बल ने संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली। तो इसीलिए अंत में जब शरीर हमारा भी छूटेगा तो कर्म भोगों के ऊपर योग बल ने विजय प्राप्त कितनी की, ये हमारी अंदरूनी स्थिति से पता चलेगा। उस दिन बाबा को एक बार भी न खांसी आई, न कफ साफ करते हैं ना जैसे, न एक बार ये आवश्यकता पड़ी। क्यों? क्योंकि बाबा ने शरीर के सब कर्म भोग के ऊपर योग बल से, कर्म योग से विजय प्राप्त कर ली थी। बस इसीलिए बाबा ने कहा, देखो बाबा, अंत में जो अवस्था होती है ना, वो कर्मातीत अवस्था बाबा की ये थी कि हम सामने बैठ के मुरली सुन रहे थे, बाबा मुरली चला रहे थे। तब तो थोड़े ही बच्चे थे, 20-25 लोग हम लोग होंगे मधुबन में रहने वाले, और हम लोग तो बाबा ने मुरली चलाई। वैसा हमारे मन में संकल्प आया, बाबा कुछ बोले, बाबा कुछ हमारे लिए बोले। बस संकल्प चलने की देर नहीं हुई, और वो तो कर्मातीत अवस्था की आत्मा थी, ब्रह्मा बाबा, तो इस कारण से बाबा तक जैसे संकल्प पहुंचा होगा, और बाबा ने मुरली में नाम लेकर के ना, और नाम लेकर के ऐसी स्थिति का बाबा ने तुरंत ही, बस देखो ये बच्चा मोहन है, हाँ बहुत मीठा बच्चा है, कभी किसी की निंदा नहीं करेगा, इसीलिए बाबा ने मुरली में ही नाम ले लिया। तो भाव क्या है कहने का कि ये कर्मातीत अवस्था बाबा की तो बन गई, हम बच्चों को बनानी है, तो इसीलिए इन चीजों में कभी भी अक्सर करके होता है, जो बैठे हुए भाई बहने होते हैं ना, मुरली के बाद भी निकल के गए, या किसी के मन में कोई बात हुई, फलाना ऐसा है, फलानी ऐसी है, तो अब हमारा संसार ही है, बाहर वाला अगर कोई बात करेगा, क्रोध करेगा, या कोई अज्ञानी हो जैसी, तो हमें महसूस नहीं होगा, अज्ञानी है वो कर रहा है। लेकिन कोई ज्ञानी आत्मा अगर ऐसा करती है, तो अक्सर करके हम भाई बहने आपस में मिलके थोड़ा ऐसी बात कर देते हैं, फलाना ऐसा है, परचिंतन जिसे बोलते हैं। अंत समय ये ही, क्योंकि बाहर की बात तो शांत होगी, अभी भी जैसी परिस्थिति, अब हम गिर रहे होंगे, फ्लड आया हुआ है, सूखा, 5 तत्वों का प्रकोप भी होगा, और ये जितने बम आदि ये सब है, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन हमें अपने को देखना है, बस मैं और बाबा, यही सोचते बाबा ने शरीर भी छोड़ दिया और चले गए वतन में, और अंतिम समय भी बाबा ने मन की बात पढ़ ली। क्योंकि बचपन से ही हमारा एक संस्कार रहा कि अगर कोई आता है अज्ञान काल में भी, किसी की भी निंदा करेगा, तो हम एकदम से ये ख्याल आता है, आज हमारे सामने उसकी निंदा कर रहा है, कल उसके सामने जाके हमारी करेगा, ये होगा। तो परचिंतन बड़ी सूक्ष्म चीज है, परमत बड़ी सूक्ष्म चीज है, इसीलिए इससे बचकर रहना, क्योंकि अंत में ये सूक्ष्म पेपर ही आएंगे, अभी भी आते हैं। खैर, उसके बाद बाबा तो मुरली चला के चले गए, और हमारे मन में बस बाबा की वही मूर्ति जैसे अंतिम समय वाली छप गई, और उसके बाद बस बाबा, अच्छा बाबा बच्चों से विदा लेता है ये कह के बाबा चले गए, और कमरे में जाके देह त्याग किया। तो ये इस रीति से हम, बाबा ने उसी मुरली में बोला था उस दिन ही, 17 जनवरी की रात को, या बच्चे यहाँ पर आते हैं, फ्री होते हैं, तब तो वही हिस्ट्री हॉल ही था, बस हॉल की छत पर चले जाओ और टहलो, मंथन करो, तो क्लास भी जल्दी हो गई थी, भोजन भी कर लिया था, तो हम क्लास में ऊपर गए हॉल के और टहल रहे थे, तो हमने देखा जी हाँ जमुना प्रसाद भाई अभी भी शायद बाहर बैठे हुए हैं। जमुना प्रसाद भाई जल्दी तेजी से निकले साइकिल पर और चलाते हुए, हमने पूछा ऊपर से, अरे भाई इतनी देर में रात को 10 बजे के करीब कहाँ जा रहे हो आप? तो भाई बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, तो दादी ने मुझे भेजा है कि डॉक्टर को बुला के लाओ। तो बाबा को जैसे थोड़ा हार्ट पेन हुआ। अब बाबा बोलता भी है ना कि शरीर तो हम सबको छोड़ना ही है, सबसे अच्छा मौत, और वो बाबा के उसमें। तो हम भी ऊपर से नीचे गए उतर के, और तब तो ये बाबा का कमरा ऐसा था कि बाबा के कमरे में पीछे की तरफ से आना होता था, ये बाहर के दरवाजे और एक्सटेंशन तो अब किया है। इतना बड़ा कमरा था जितना बस पलंग आ जाए, पलंग तक कमरा और एंट्री बैक साइड से, तो वो ही एंट्री थी, इधर तो कुछ ही एंट्री थी नहीं। तो बस वहां जाके हमने देखा कि बाबा तो हमें दिखे नहीं, दादी की पीठ दिखी। दादी की पीठ देख करके हम तो देखते ही रह गए, और बाबा के हाथ में दादी जी का हाथ, और बस बाबा ने विदा ली। तो भाव क्या है कहने का इसमें, कि शरीर भले कोई छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब शरीर छोड़ने का समय आता है तो उसको रोक भी नहीं सकते, और इसके लिए बेस्ट क्या है, बाबा की तरह हम भी इच्छा मृत्यु को प्राप्त करें। जब हमें एहसास होने लगे बाबा को उन अंतिम 2 दिनों में ये पेंडिंग काम है, ये करना है, ये पत्र लिखने हैं, ये पूरा आज बच्चों को मुरली नहीं सुनाई, तो बाबा ने वो भी कोई भी काम भी पेंडिंग न रहे और बचा हुआ जिसको हम कहें कि कल कर लेंगे कल कर लेंगे, अक्सर करके ऐसा होता है, और काम भी ना हो और हम सब लोग भी बस बाबा अब मैं आपके पास आया ये सोच के बस बाबा अब बुला रहे हो, और बस बाबा भी बच्ची, दादी ने कई बार बताया है ये बात कि बाबा तो बस छुट्टी, बाबा कहकर ही गए क्लास में, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, ये शब्द बाबा ने कभी नहीं कहे, विदाई लेता है, राइट, विदाई लेता है। तो देखने की बात यही है कि हमें भी जाना तो है ही है, सभी को जाना है, लेकिन हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े, उससे क्या होगा, जब हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे तो कोई भी बात और याद अंत में नहीं आएगी, बाबा की तरह बस बाबा आए कि आए परम धाम, कर्मातीत स्थिति प्राप्त होगी और वहां जाके हम बैठ जाएंगे। तो ये बात बड़ी आवश्यक है। अब लेट अस कम टू द जस्ट, मैं तो समराइज ही कर सकता हूँ समय में। इसके लिए 8 शक्तियां तो हम लोग योग में बताते ही हैं, सबको मालूम है हा? वो शक्तियों के अलावा 8 और शक्तियां हैं जो बाबा चाहता है हम बच्चों के अंदर आए, क्योंकि उन शक्तियों को हम यूज कर रहे हैं, उनसे हम शूद्र से ब्राह्मण बने, उन शक्तियों के प्रयोग से अपने जीवन में बन भी रहे हैं। अब ये 8 सूक्ष्म शक्तियां जो हैं, इनके प्रयोग से हम ब्राह्मण से फरिश्ता और फिर देवता बनेंगे, ये बहुत आवश्यक है। अल्टीमेटली हमें बनना तो वही है, ब्राह्मण बन के ही रुक गए, फायदा क्या आधी मंजिल तय की। तो उसके लिए पहली शक्ति जो वर्तमान समय आवश्यक है वो है महसूसता की शक्ति। महसूसता, हाँ, कोई भी वर्क हम करें, क्योंकि ब्राह्मणों में अक्सर ये होता है चलता है ये भी तो होता है चलो, तो कई बात ऐसा होता है, हम कई चीजों को जो हम ब्राह्मणों की अल्टीमेट स्टेज के लिए बाधक है कई चीजें उनमें. फॉर एग्जाम्पल भाई प्रवृत्ति में रहते हैं, कहीं गए शादी ब्याह में किसी के, तो बाबा भी कहता है दादी भी कहते हैं चलो ये तुम अपना दृष्टि देके खा लो या ये कर लो. लेकिन वो तभी जहां तक हो संभव थोड़ा भी अन्न का दाना ऐसा गया वो हमें बस विकृत कर देगा मन को हमारे, और बाहर की दुनिया में हम संपूर्ण बन के अपनी अवस्था को प्रदर्शित नहीं कर सकते. तो दिल की महसूसता हो न कि दिखावे की महसूसता. बाबा कहता एक होता है दिखावे की, बस जैसे किसी से गए टक्कर लगी तो सॉरी वर्ड मुंह से निकल जाता है और वो एक कन्वेंशनल चीज हो गई है. लेकिन किसी के भी अगर दुख देने के हम निमित्त थोड़ा भी बन जाते हैं, अंदर दिल की महसूसता पहली. हर एक शक्ति की बहुत बहुत एक्सप्लेनेशन है लेकिन अभी तो समय के मैं रिफर कर देता हूँ बस. वो तो महसूसता जब जितनी बढ़ती जाएगी अंदर कोई भी काम हो तो दूसरी शक्ति जो आवश्यक है महसूस जब हम करेंगे तो परिवर्तन की शक्ति. हम चाहते हैं परिवर्तन होना लेकिन फिर भी नहीं हो पाते. क्यों? क्योंकि परिवर्तन की शक्ति के लिए सबसे पहली चीज है अटेंशन. अपने ऊपर इतना अटेंशन हो हर चीज पर, मेरा बोलने पर, सुनने पर, नींद में, कोई भी चीज पर बिल्कुल अंतिम स्थिति की तरह अटेंशन हो. परिवर्तन, परिवर्तन हुआ. देखो जब उतने अज्ञान काल में तुलसीदास को, सूरदास को, कबीरदास, इन लोगों के जीवन में भी परिवर्तन हुआ. कहते हैं तुलसीदास को बहुत प्रेम था अपनी उससे, युगल से वो गया तो रस्सी जैसी समझ के ऊपर गया तो क्या था? सांप था. तो देखिए कि अज्ञानी लोग भी मताती प्रेम में, तो ये हमारा प्रेम भी जो बाबा के प्रति है ना, ये द ओनली लव होना चाहिए जो बाबा. कई बार हम कहते हैं बाबा से तो है लेकिन बाबा के साथ साथ इस साधन से भी है, इस व्यक्ति से भी है, वो नहीं होना चाहिए. अंत समय वो खींच लेगा. इसीलिए बाबा ने कहा कि प्रेम सबसे हो लेकिन किसी से भी अति प्रेम नहीं हो. अति प्रेम अगर होता है तो क्या होता है? अंत समय वो याद आएगा, वो ही व्यक्ति याद आता है जिससे बहुत प्रेम हो या बहुत शत्रुता हो. अगर किसी भी व्यक्ति से अति प्रेम हुआ तो दूसरे किसी व्यक्ति से मन में दूरी का भाव भी रहेगा. इसीलिए संपूर्ण तो हम सबको बनना ही है. तो इसीलिए अब माया उन रूपों में नहीं आएगी जिन रूपों में हम देखते आए हैं, स्थूल रूप में, लेकिन माया सूक्ष्म रूप में आएगी. फॉर एग्जाम्पल हम सब कहते हैं सीता की बात, इतना उसमें था त्याग भी, राम के साथ जंगल भी चली गई और वो सब भी मतलब जेवर वगैरह सब छोड़ के गई. हाँ बस, तो ये जो थोड़ी बहुत बात रह जाती है ना, परिवर्तन की शक्ति बहुत आवश्यक है. एक एक शक्ति का मैंने बताया डिटेल है, वो डिटेल अभी तो मैं शक्तियां रिफर कर देता हूँ इस ऑर्डर में. तो ये अपने ऊपर ध्यान देने से होगा. तीसरी शक्ति जो आवश्यक है वो है अभी वर्तमान समय मनन चिंतन शक्ति. ज्ञान मुरली रोज हम सुनते हैं, इतनी बड़ी मुरली होती है लेकिन याद कोई भी चीज नहीं रहती, बहुत कम. इसीलिए दुनिया की बातें तो 500 साल पुरानी भी अंदर बैठी हुई है याद आ जाएगी. लेकिन ये ना होना चाहिए. ये तब होगा जब हमारी मनन शक्ति, आज बाबा ने मुरली में ये पॉइंट बोला, वो मनन शक्ति से हम अपने को मगन करते रहेंगे. ये शक्ति बहुत आवश्यक है. क्यों? ये पाचन शक्ति की तरह, जैसे शरीर है, शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए हमने बहुत बादाम अखरोट भी खा लिए, घी भी खा लिया सब, लेकिन शरीर में अगर पाचन शक्ति नहीं है तो वो सब वेस्ट चला जाएगा। तो इसलिए ये आवश्यक है, मनन शक्ति मन के लिए आवश्यक है, उसी तरह जैसे पाचन शक्ति जो है वो शरीर के लिए आवश्यक। तो मनन जब होता रहेगा तो क्या होगा, हम में ऑटोमेटिकली भूलने की शक्ति आती रहेगी, क्षमा की शक्ति आती रहेगी। अक्सर करके हम किसी की बात को भूल नहीं पाते, क्षमा नहीं कर पाते हैं, वो दृश्य वो व्यक्ति कचोटता रहेगा हमारे मन को, बस वो घटना जब भी वो व्यक्ति याद आया। तो इसीलिए बाबा दादी जी ये बात कहते थे, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी, अब आपके सामने ऐसा रूप नहीं आएगा माया का, सूक्ष्म रूप में और बड़े बदले हुए रूप में आएगा, कि बस होगा दिखावे में प्रेम का रूप लेकिन अंदर बहुत मोह समाया होगा। क्यों? क्योंकि किसी से अति प्रेम है तो अति वो भी होगी किसी से, जो बात कही। तो क्षमा की शक्ति बहुत आवश्यक है, ये तभी होगी जब हम उसकी धृष्टता को, उसने कोई बात कही है उसको भूल जाएंगे, भूलना ना। और ये शक्ति कौन सी शक्ति से लिंक है? सत्यता की शक्ति से। बाबा को क्या बोलते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम, बस शिव कल्याणकारी सुंदर, हमारी आत्मा भी अति कल्याणकारी, हरेक के लिए कल्याण की भावना हो, किसी के लिए अकल्याण की अंदर संकल्प भी ना हो। ये जब भिन्नता आ जाती है ना तो ये ही प्रॉब्लम की जड़ है। कबीरदास भी बोल के गए ना, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बाबा ऐसा प्रेम सिखा रहा है, ना किसी से, कभी कोई बड़ी अच्छी बात होती है तो दिल में अरे फलानी, जिससे बहुत दिल की निकटता होगी उसे बतानी है ये बात, तो उसके लिए मन व्याकुल होता रहेगा उससे मिले बात करे, या अति दुष्टता जिससे होगी। तो सत्यता की शक्ति, इसीलिए कहा है सच तो बिठो नच, अंदर ही अंदर हम नाचते रहे खुशी में। ये बात जो है सत्यता की शक्ति, जितना हम सच्चे दिल पर साहब राजी, बाबा बिल्कुल अपना बनाना चाहता है, इसलिए ये शक्ति को भी हम लेते चले। और क्या करें जब ये अल्टीमेटली हमें बनना तो कर्मातीत है ना, तो इन सभी सूक्ष्म शक्तियों को धारण करते करते हमें निर्भयता की शक्ति आती जाएगी। क्योंकि अंतिम दृश्य देखने के लिए, आज या कल भी बाबा ने मुरली में बोला ना, बहुत निर्भय होना पड़ेगा, शायद आज या कल की था, हाँ निर्भय, विनाश के मतलब खून ही ना हक खेल होगा। तो इसीलिए उसे देखने के लिए हमें बहुत निर्भयता की शक्ति तभी आएगी जब ये कोई भी ना, मतलब हम किसी भी प्रकार की, क्योंकि ये शक्ति जुड़ी है साथ में शांति की शक्ति, बाहर के लिए दृश्य देखने के लिए निर्भयता चाहिए, अंदर उतनी ही शांति की शक्ति। तो अंत में चार प्रकार की अग्नियां हमें बहुत बहुत कष्ट देने वाली है। कौन सी है चार प्रकार की अग्नि? हाँ वो अंत में है, सबसे पहले तो बाहर विकारों की अग्नि, हमारे अंदर जो अंश अगर रह भी गया किसी का तो वो बहुत दुखी करने वाला है, अंश का वंश भी नहीं रहना चाहिए। अंतिम समय जैसीता की बात करी ना, ऐसे ही अंतिम समय वो कोई भी बात रही होगी अंश, वो वंश के रूप में भी निकल आएगी और वो हमें हार खिला देगी। तो इसीलिए वो बात हमें पक्की रखनी है कि ये ना हो। तो विकारों की अग्नि, पुराने संस्कारों की अग्नि और लगाव की अग्नि, लगाव झुकाव। संस्कार भी खत्म हो गए लेकिन किसी में अगर लगाव झुकाव रहा तो उसके लिए बाबा कहता है बस ये अग्नि तभी शांत हो सकती है जब किसी भी प्रकार का हमारे अंदर लगाव और झुकाव नहीं रहे। ये बड़ी सूक्ष्म चीज है, इसको समझना भी आवश्यक है, पता भी नहीं चलेगी। लेकिन किन दो माध्यम से हम पता कर सकते हैं? एक तो स्वप्न के माध्यम से, क्योंकि सूक्ष्म चीज होती है ना, साकार में हमने विजय भी प्राप्त कर ली, अगर सूक्ष्म रह गई तो वो स्वप्न के माध्यम से हमारे दिमाग में आ जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आपके स्वप्न भी रात्रि को अपनी दरबार लगाओ। तो जब हम दरबार लगाएंगे ना, पोता मेल मदद है, तो वो मन बुद्धि संस्कार की जब दरबार लगेगी तब हमें ये पता चलेगा अरे ये अंश तो रह गया। वैसे पता नहीं चलेगा लेकिन अपने स्वप्न संकल्पों से वो पता चलेगा। तो एक ये बात। और अंतिम में पश्चात, जैसे बहन जी ने कहा ना, पश्चाताप की अग्नि। बस ब्राह्मण भी बने, दुनिया का काफी कुछ त्याग भी दिया, लेकिन अगर कोई रह गया संपूर्ण नहीं बने, देखा फलाने की तो बाबा ने सतयुग में नंबर 2 है, नंबर 3 है, मेरा नंबर तो बहुत पीछे रह गया। बस थोड़े समय की महसूसता होगी ये, और पश्चाताप की अग्नि में जलकर हम खत्म हो जाएंगे। तो ये ना आए, पश्चाताप की अग्नि ना आए, उसके लिए पहले ये विनाश की अग्नि, लगाव झुकाव की अग्नि, पुराने संस्कारों की अग्नि, इनसे हमें पहले इनको जीतना होगा। इन अग्नियों का ताप भी बहुत बड़ा है। तो ये बात अंत में याद रहे, और इसके बाद फिर हम सब लोग बाबा के साथ इन सूक्ष्म शक्तियों को प्राप्त करके 16 शक्तियां हो जाएंगी, 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, और फिर हम सभी बाबा के साथ कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर, जैसे ममा ने बोला, तो उन शक्तियों को प्राप्त करके अपनी सीट पर चले जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो अब सूक्ष्म पुरुषार्थ होना चाहिए, ये इन चीजों पे ज्यादा अटेंशन होना चाहिए जो बाबा कहता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति जी। नहीं नहीं, अभी बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस आपको सुनने की मिलेगी। साकार बाबा की तो बहुत बहुत बातें हैं, क्योंकि बाबा भी देखो बिल्कुल वो जीवन कहानी में आता है, सबने पढ़ी होगी एक अद्भुत जीवन कहानी। बाबा की पत्नी ने बोला, युगल ने बोला, जब बाबा की आयु लगभग 55-56 वर्ष की थी कि बस अब हमें सब कुछ छोड़ के काशी में या वहां जाना चाहिए, हरिद्वार, बहुत पैसा है, जीवन यापन के लिए काफी है। क्या बोला बाबा ने? देखो अभी थोड़ा ठहरो, अभी इतने हजार इतने लाख और कमा ले। मतलब बाबा भी हम आपकी तरह ही था, लेकिन अपने पुरुषार्थ से सिर्फ कितने वर्षों में? 33 वर्षों में ही संपूर्ण बन गया। और धन की लालसा होना कोई बुरी चीज नहीं है, धन की शक्ति भी आवश्यक है, धन से ही तो बाबा ने इतने वर्ष तक इतने 350 भाई बहनों की पालना की। लेकिन फर्क समझना चाहिए, आवश्यक क्या चीज है और लग्जरी क्या चीज है। जब हम ये जाएंगे, सही दोनों हैं, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है, ये मन में जब वो क्लैरिटी आ जाएगी ना, तो तो फिर हमसे ये माया के वश में होने की बात नहीं रहेगी। सही और गलत का निर्णय बड़ा आसान है, जो हम सब लोग जानते हैं, ज्ञान में आ गए, वही वो माया का था गलत। लेकिन अब हमें सही और बहुत सही उन दोनों में डिस्कशन करना है। इन सब के लिए सूक्ष्मता बहुत आवश्यक है। बाबा ने यही समय पर पहचान लिया, कहां वो स्थिति थी और अंत समय। हम इन लोग देखते थे जब 66-67 वगैरह में मिलते थे तो बाबा बिल्कुल मतलब अव्यक्त अवस्था की तरफ जा रहा था, और बिल्कुल बाबा को जैसे ना लौकिक से मतलब अंतर्मुखता और एकांत प्रिय, इससे ही एकाग्रता आएगी। सबसे बड़ी चीज है एकाग्रता की, हमारे सबके अंदर कमी है, वो एकाग्रता आएगी तो फिर हम सब लोग बाबा के पास चलेंगे। एकांत एकाग्रता तो बहन जी बहुत करा देंगी क्लास, तो ये इसके लिए अभी हम सबको वैसा बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए, साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है।
एक हाथ हिलाकर हम सभी आदरणीय भाई साहब का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं।